राम या प्रवचन परम शरद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 दिसंबर 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम
बात मुख्यता से कही है। उसका तात्पर्य ऐसे समझना चाहिए कि जो परमात्मा है उसके सब स्वतः आश्रित है। अपना अभिमान करके मनुष्य अपने को अलग मान लेता है, वास्तव में वो परमात्मा की चीज है। भगवान ने कहा कि धूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धि देवच अहंकार इसी यम में भिन्ना प्रकृति रहा। ये मेरी 8 प्रकार वेदों वाली प्रकृति है, इसको अपरा कहा। और दूसरी प्रकृति परा है, जिसको जीव कहते वो भी मेरी है। तो परमात्मा की ही चीज है और परमात्मा की होते हुए भी परमात्मा स्वरूप है। इसको ठीक जान लेने से सब कुछ परमात्मा ही है, यही अंत में सिद्ध होता है। इसमें जो मैं हूं वो परमात्मा स्वरूप हूं ऐसा मानना भी अच्छा है, परंतु मैंपन है वो तो परमात्मा की एक परा प्रकृति है, और मैंपन में जो अहंकार है ये अपरा प्रकृति है, ये परमात्मा की ही है। साफ कह दिया कि ये अपरा प्रकृति मेरी है, ये परा प्रकृति मेरी है। जिस परा प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है, ध्यान देने की बात है, संसार को धारण कर रखा है जीव ने। ये संसार को धारण कर रखा है इसलिए इस पर जिम्मेवारी आ गई। अगर ये अपनी धारणा छोड़ दे तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। तो अपने अहंकार का त्याग करने की आवश्यकता है। तो अहंकार की 3 बातें होती है, चाहे अहंकार का अभाव करो, चाहे अहंकार को बदल दो, और चाहे अहंकार को शुद्ध कर लो। तो इन तीनों में अहंकार बदलना ये सुगम पड़ता है। जैसे भाई है बहन है वे अपने को कुंवारा समझते हैं और ब्याह देने के बाद ये मान्यता नहीं हूं कि मैं कुंवारा हूं और मैं कुंवारी हूं, ऐसा नहीं हूं। मानो हमारा विवाह हो चुका, हम विवाहित हैं, तो ठेठ स्वयं तक ये विवाह का संस्कार बैठ जाता है। यद्यपि ये होता है शरीरों को लेकर के, पर शरीरों को लेकर के स्वीकृति स्वयं में होती है। मैं विवाहित हूं, ऐसे गृहस्थ से साधु हो जाए तो मैं साधु हूं। साधु पने का वेश बदलता है शरीर का, परंतु विचित्रता यह कि मैं पण में बदल जाता है, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं साधु हूं। ऐसे ही मैं संसार का नहीं हूं, संसार मात्र परमात्मा का है और मैं भी परमात्मा का ही हूं। इसका नाम है शरणागति। मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा का है और परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसे भाव से परमात्मा की अर्पित हो जाना, ये शरणागति। इससे ऊंची चीज कोई नहीं है। भगवान ने कहा है, बहु नाम जन्म नाम अंत आते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्व इति। तो बहुत से जन्मों के अंत में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में, इसका अर्थ हुआ कि अब जन्म नहीं होगा। जन्म कब होता है? कारण गुण संगो से सदसत जन्म जन्म ऊंच नीच योनियों में जाता है गुणों के संग से, और गुण है प्रकृति के और प्रकृति है परमात्मा की। तो परमात्मा की प्रकृति तो सदा है, ज्यों की त्यों रहेगी। ये प्रकृति स्थानी कर सकती है, प्रकृति में स्थितों को अपना बना लेता है, अपना मान लेता है। कर्षति ऐसे खेचता नहीं है, उनके साथ अपनापन कर देता है। वो अपनापन प्रभु से हटाकर उसका किया हुआ है, बनाया हुआ है। वो बनाया हुआ इसके होने से इस पर जिम्मेवारी आ गई, नहीं तो अपनापन संसार में है नहीं। इस वास्ते अपना पर रहेगा नहीं, किसी का ही नहीं रहा। न स्वर्ग में रहता है, न पाताल में रहता है, न मृत्यु लोक में रहता है, अपनापन रहता नहीं। सदा सद योनिषु घूमता है, घूमना पड़ता है। तो उनको अपना मान लिया, इतनी जो बात है। अगर अपना न माने, स्वतः मुक्त है, स्वाभाविक। मुक्ति होने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, कारण क्या है कि गुणों का संग मिल जाता है केवल परमात्मा का है। तो ये शरणागति है, अपने आप को भगवान को सुपुर्द कर लेना। अपनी कोई चीज नहीं है और अपने लिए नहीं है, ये दो बात खास समझने की है। अपने लिए भी नहीं है, ये सांसार चीजें अपनी नहीं है, इतनी ही बात नहीं। हम भजन स्मरण करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं और समाधि करते हैं। तो ये जप आदि करना वाणी का काम है, सेवा करना शरीर का काम है, और ध्यान चिंतन करना सूक्ष्म शरीर का काम है, और समाधि करना कारण शरीर का काम है। कारण शरीर सबका कारण है, वो सूक्ष्म का और स्थूल का सबका। उस शरीर में समाधि होती है, तब तक समाधि के दो भेद होते हैं। एक समाहित अवस्था होती है, एक व्यथित अवस्था होती है। समाधि में स्थिर है को समाहित अवस्था हो गई, और बाह्य वृत्ति तो व्युत्थान अवस्था हो गई। तो समाधि और व्युत्थान, ये जो अवस्था का बदलना है, ये ही प्रकृति का संग है। संग होने से ही ये बदलता है। परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। और प्रकृति में परिवर्तन ही होता है, ये स्थिर कभी रहती ही नहीं। चाहे सर्ग अवस्था हो, चाहे प्रलय अवस्था हो, चाहे महासर्ग हो, चाहे महाप्रलय हो, इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। तो ये परिवर्तनशील प्रकृति के गुणों के साथ संबंध जोड़ लेने से ये भी परिवर्तन में मन सदस्य योगी में जन्म लेता है। तो उसके मिटाने के लिए मैंपन को शुद्ध करना कर्मयोग से है, और मैंपन को मिटा लेना है ज्ञान योग से, और मैंपने को बदल देना है ये भक्ति योग से। इनमें सबसे सुगम है मैंपन को बदल लेना, क्योंकि जैसे शरीर के साथ अपने को एक मानते हैं, तो कई दिनों को वर्षों तक कहते मैं बालक हूं, बालक हूं, बालक हूं, हूं बालक हूं, मैं बालक हूं, ऐसा कहते। वो मैं बालक हूं छूट करके मैं जवान हूं, मैं जवान हूं, मैं युवा हूं, ऐसा हो जाता है। और वो जवान होता हुआ भी मैं बूढ़ा हूं, ऐसा हो जाता है। तो शरीर और संसार के संबंधों को लेकर ये बदलता रहता है, फिर बदलने के साथ रहने से बदलता ही रहेगा सदा। तो हमको शुद्ध करने से मिट जाता है, और मिटाने से भी मिट जाता है, और बदलने से भी मिट जाता है। परंतु बदलना सुगम है, मिटाना कठिन है, क्योंकि मिटाने में मिटाने का एक अहम और पैदा हो जाता है। समझता हूं मैं मिटा रहा हूं, परंतु मिटाता नहीं है, किंतु उसका रूप बदलता है। बहुत दूर तक ये अहम पिंड नहीं छोड़ता है। इस अहम को अगर भगवान के अर्पण कर दे, मैं भगवान का हूं, और जो देखने में, सुनने में, समझने में आवे, वो सब भगवान का है, भगवत रूप है। ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, भगवान का है, भगवत रूप है। भगवान को दे दिया तो भगवान का रूप ही हो गया। जैसे आग में कोई चीज रख दो, सब लाल हो जाती है, चमकने लगती है, ऐसे भगवान के अर्पण कर दो, वो लाल शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाएगी और दिव्य हो जाएगी, अलौकिक हो जाएगी। इस वास्ते भगवान के चढ़ाए हुए प्रसाद को लखपति, करोड़पति, अरबपति भी हाथ फैलाते हैं कणका के लिए। तो कणका के लिए नहीं है, भगवान का हो गया वो, भगवान का प्रसाद। ऐसे सब कुछ भगवान के अर्पण करते, सब भगवान का प्रसाद हो गया, सबका सब ही। एक इसमें आदत है, कर्मियों की आदत नहीं है, और ज्ञान योग की भी आदत नहीं है, और अर्पण की आदत है। पौधे होते हैं, जमीन से होते घास होते हैं, पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, बड़े छोटे बड़े 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 तार है, खजूर है, बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। तो ये वृक्षों में भी देखा जाए एकदम ऊँग करके बड़े हो जाते हैं, उनमें ये बात देखने में नहीं आवेगी। तो अहंकार जिनका दृढ़ है वो शरणागत नहीं हो सकेगा। परंतु बेली होती है वो बेल आप से आप उसको ये हमारे जैसे नेत्र आदि की इंद्रिया ऐसी इंद्रिया नहीं होती, उसमें त्वचा इंद्रिय की मुख्यता होती है, नेत्र आदियों की नहीं, वे सब छिपी हुई रहती है। ऐसे तंतु घूमते रहते हैं वायु से, वे तंतु भी आगे सामने वृक्ष हो, उस सड़ी पड़ी हुई लकड़ियां हो, चाहे दीवार हो, उसको पकड़ देते हैं। उसको पकड़ने की त्वचा इंद्रिय है ना, इसे पकड़ने की शक्ति है। बेली के सूक्ष्म तंतु होते तार की तरह, वो लकड़ी होती ऊपर के आटा देकर पकड़ देती है और स्वयं ही बेली चढ़ती है ऊपर होते, उसको फिर पकड़ देती है, ऐसे वो पकड़ कर ऊपर चढ़ जाती है। तो शरण लेने का स्वभाव वृक्षों में भी है, उसी शरण हो जाते हैं। बेली में प्रत्यक्ष देखने में आता है क्योंकि आश्रय लेती है सामने, तो ये स्वाभाविक आश्रय लेने की शक्ति है, स्वाभाविक उस शक्ति को ये पूर्ण कर ले। शरण सुगमता सबसे सुगम है, जब बेल में कोई होश भी नहीं, नेत्र भी नहीं, तो भी देखो वो बेली पकड़ती है, ऐसे ऐसे बढ़ती रहती पटने से। और तंतु देखकर आपने ख्याल नहीं किया होगा, मान लेती है, लकड़ी बड़ी होती बड़ा आटा दे, छोटी होती छोटा छोटा आटा दे देती है और पकड़ लेती है, तो वो आश्चर्य हो जाते है। तो आश्चर्य लेना हर एक का काम है। आप भी अपनी उम्र में देखें तो किसी बड़े आदमी का आश्रय लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं माँ के आश्रित रहते हैं, गोदी लेने वाला कोई आश्रित रहते हैं, वो फिर आश्रित रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, कुटुंब का आश्रय लेते हैं, धन का आश्रय लेते हैं, पद का आश्रय लेते हैं, अधिकार का आश्रय लेते हैं, जमीन जायदाद का आश्रय लेते हैं, ये आश्रय लेते रहते हैं। भगवान अत्यधिक कृपालु है, ये कितना ही आश्रय ले रहा, किसी कितना ही पकड़ रहे, परंतु छुड़ाते रहते हैं, भगवान रहने नहीं देते। कोई कहीं भी बड़े पद ब्रह्मा तक के पद को ठहर नहीं ले तो वो भी खत्म हो जाता है, वो भी पद रहता नहीं, टिकने देते नहीं। ये क्या है, ये भगवान का बुलावा है, आवाहन कहते हैं, आवाहन बुलाना, भगवान कहते हैं मेरी तरफ आ जा, तू मेरा अंश है, मेरी तरफ आ जा। तो भगवान की तरफ भगवान का बुलाना है, ये उपदेश है, उससे हम कितने पकड़ लेते छूट जाएगा, छुड़ा देंगे भगवान पकड़ने देंगे नहीं, अनंत युग बीत जाए बंधु भगवान का स्वभाव छूटता नहीं, परम दयालु है। उसमें कृष्ण है ना, ये खींचने वाले का नाम है, खींच रही है। तो बेली आदि में भी है, वो सब डरपोक है। उस हरिण को देखा है मैंने, बड़ नीचे सत्संग होता वहां अमदोधाम से, एक बारह सीमा बड़े बड़े सीमा वाला है, कुत्ते पीछे पड़े तो मनुष्यों की तरफ भागा। डरने वाला मनुष्यों की छाया नहीं छिपता, वो मनुष्यों की तरफ भागा। तो इसने ख्याल हुआ नहीं हम लोगों को, जिसने दूर कर कुत्तों को दूर करे, पर चट भागा, भाग आ करके और अगर ही पहाड़ आ गया गंगा जी कुटिया की तरफ, तो वो जल में कूद गया, जल में बह गया, जल में तैरने लगा। आगे बड़े बड़े पत्थर से पानी से वहां करके डूब गया। तो ये एक कथा है, इससे ये मालूम होता है कि वो भी शरण देता है। जंगल में घूम करके, जंगल में नहीं गया, मनुष्यों की तरफ आया, जो मनुष्य डरता है। उसमें भी नहीं किसी ने सुझाया तो फिर पानी के शरण गया, फिर डूब गया। तो शरण जाना स्थावर जंगम सबका स्वभाव है। इस स्वभाव को देखते हुए आप लोग सब जितने शरण लेते हैं, जिसमें भी माता बहनों का शरीर है, ये शरण लेना का विशेष है। इनकी प्रकृति है स्वभाव आश्रय लेना। आश्रय लेना स्वभाव होने से शास्त्र ने आज्ञा दी है, वो ठीक स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्म कर्म स्वभाव जम शासन कर्म स्वभाव जम वैश्य कर्म स्वभाव जम शूद्र श्यापी स्वभाव जम, ये स्वभाव इनका धर्म है। उसके अनुसार स्त्रियों का भी स्वभाव धर्म है, विशेष है स्त्रियों का। इस बात मनु जी ने कहा कि बाल्यावस्था में ये माँ बाप के आश्रित रहे, विवाह हो वन होने पर पति के आश्रित रहे, और लड़का लड़की हो जाए पति अगर न रहे तो पुत्र के आश्रित रहे। पुत्र के लिए बताया गया है कि पिता से 100 गुना अधिक माता पूजनीय होती, आदरणीय होती। माँ की सेवा करो, माँ की आज्ञा मानो, पर जो माँ को बाहर जाना हो काम करना हो तो पुत्र की आज्ञा माने। पुत्र को चाहिए माँ को जा तो साथ में रहे, क्योंकि सियो रक्षा विशेषता, शास्त्रों ने कहा स्त्रियों की रक्षा विशेष करनी चाहिए, क्योंकि ये आश्रित रहने वाले हैं। इसको आप कितना ही स्वतंत्र करो, प्रकृति स्वाभाविक आश्रित रहने वाली है। तो ऐसे पुरुषों के उनकी अपेक्षा बहनों माताओं की स्वभाव प्रकृति है। ऐसे मैंने देखा है सुना है, ऐसी देखती बहनों माताओं की मैंने देखी है। उनको कोई इच्छा नहीं है, कोई बात इच्छा थी नहीं, परंतु उसने विवाह किया। विवाह करने से पहले कह दिया कि मैं पुरुष के लिए ब्याह नहीं करती हूं, सब दूसरे और हो गए। तो पुरुष ऐसे ऊपर तले में, वो नीचे तले में, एक बाई का नाम है भूरी बाई नाम था, नाथद द्वारा में रहती थी। शरणानंद जी ने पूछा को तेने ब्याह स्वीकार क्यों किया, कि मेरा कोई रक्षक चाहिए और मेरे कोई इच्छा नहीं, बड़ी संत हो गई वो। तो हमें रक्षक रे वास्ते आश्रय चाहिए, और लेना नहीं है उनसे, कोई जरूरत नहीं है रक्षा वाला। तो स्त्रियों की विशेष होती है ये। आज जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये होगी नहीं, जलेगी नहीं, टिकेगी नहीं। तो आश्रय लेता है तो फिर मनुष्य का क्या ले, आश्रय लेना तो भगवान का ही ले। सबसे ऊंचा वही भगवान है। एक माता जी थी यहाँ पर कलकत्ते में, वो भगवान को पिताजी मानती थी। तो उसने मेरी बातें हुई, उसने कहा सब जितने हमारे पिताजी के भक्त हैं, हमारे पिताजी हैं सब, मेरे को अच्छे लगते हैं सभी, और मेरे पिताजी के हैं सब, सब गर्व हमारे पिताजी करते हैं। तो कितनी एक शांति, कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितना आशा, कितनी प्रसन्नता है। तो ऐसे वो शरण लेने का सबके लिए अधिकार है, सब अधिकारी है, सब सबल है, इसमें निर्बल नहीं है। सबके सब इस विषय में शांत स्वाभाविक है और सबल है और योग्य है। संसार का काम करने, कब्जे में करने में योग्यता संपादन करनी पड़ती है, विद्या बुद्धि योग्यता आदि संसार में काम कर सके, पर शरण लेने के लिए विद्या सीखने की जरूरत नहीं है। बचपन में बड़ेपन में शरण लेते ही है, परिवार का शरण होता है, धन का शरण होता है, घर का शरण होता है, जमीन का आश्रय होता है, आश्रय लेते हैं, आश्रय लेने का स्वभाव है। स्वभाव होने से स्वभाव के अनुसार किया हुआ साधन जल्दी सिद्ध होता है। तो ये शरण का स्वभाव है, ये जल्दी सिद्ध होता है। और सिद्ध क्या करना है, शरण रहना भगवान के, शरणागत की वह वो योग भ्रष्ट होना नहीं होता। शरणागत योग भ्रष्ट होता ही नहीं। योग भ्रष्ट कौन होता है, मन बुद्धि का शरण लेता है, कर्म सापेक्ष साधन है उसका, योगा चलित मानसा, योग से अंत समय में मन चलित हो गया तो कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके मन की इंद्रिया के अंतःकरण की प्रधानता है, वो कारण संग पकड़ता है, उसने जाता है। तो योग से चरित मना हो गया, संसार को तो छोड़ दिया, और भगवान को अंत में पकड़ नहीं सकता तो क्या होता है, ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया। तो ज्ञान योग के अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रकरण आता है। तो योग भ्रष्ट तो वो संसार को तो छोड़ दिया, परमात्मा पकड़ में आए नहीं। इस वास्ते अर्जुन के संदेह हुआ कि छमना भ्रमिव, जैसे बदल का टुकड़ा दूसरे बदल में जाने लगा, बीच में छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे संसार को छोड़ परमात्मा में जाने लगा, अंत करने में वृत्ति उठी हट गई, तो फिर परमात्मा कैसे जाए। और जो स्वयं भगवान के शरण हो जाता है, इसमें करणों की जरूरत नहीं है, अंतकरण ना इंद्रियों कर्मेंद्रियों की है, ना गल ज्ञान इंद्रियों की है, ना अंतकरण की है, किसी की शरण नहीं। और अहम है उसको बदल लिया कि मैं परमात्मा का हूँ। जैसे कुंवारा आदमी ब्याह होने पर चाहे बहन हो चाहे भाई हो, अहंकार बदल जाता है, इस तरह से भीतर से अहम बदल जाए, मैं भगवान का हूँ। तो मैं भगवान का हूँ ये बात शुभ में समझ में भी शुभ आती है, परंतु एक जो इसने संसार को नया पकड़ा है, वो पकड़ छोड़ता नहीं, ये खास बाधा है। चाहे ज्ञान योग में जाओ, भक्ति योग में जाओ, कर्म योग में जाओ, किसी में जाओ, स्वीकार कर रहे परमात्मा को, स्वीकार कर ले, इसमें कोई बर है, बर को स्वीकार कर लिया। साधारण गांव में मैंने सुना है, अपनी कन्या को कहते हैं भाई तू सीख ले, लोग कहते हैं भाई घर और बर फिर वो मिलेगा। तो घर में बर में ठीक हो जा, तो घर भी स्वीकार किया, बर भी स्वीकार कर दिया। इस तरह से परमात्मा को स्वीकार कर ले। भक्ति में भी स्त्री भाव मुख्य माना है, पुरुषों में भी स्त्री भाव, पुरुष में भी। कबीर साहब कहते हैं, ये तो नार है गति प्रपंच सारा, सब स्त्री है, प्रकृति प्रकृति का प्रकृति है, सभी स्त्री है। और स्वयं को भगवान को स्वीकार कर लिया, भर कर लिया, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। मीराबाई ने दोनों बातें बढ़िया कर ली। इस वास में मीराबाई प्रेम की ध्वजा है। गोपियां वो कलयुग में गोपी हो, तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, बस दूसरों ने कोई यहाँ फैल होते हैं। तो ये कृपा करके आपने पकड़ा है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं छोड़ सकूं तो पुकारो भगवान को बार बार, जो आपके स्वभाव के बदलने के सब बदल देंगे। जैसे कोई घर में बंद है, वे घर घर सबके सब है, बाहर की दीवार के चार दीवारी और एक परकोटा होता है शहर का, उसके बस में। तो घर से निकलना अपना काम है, बाहर दरवाजे से निकलना निकालना और मालिक का काम है। परंतु भीतर में भी कोई है, घर से निकलना चाहे और निकल नहीं सकता तो पुकारे जोर जोर से, तो सरकारी प्रबंध से वो भी तोड़ देंगे और बाहर भी निकाल देंगे। तो अपने अहंकार को न छोड़ सके तो उसी को पुकारे रात दिन के, महाराज मेरे से छूटता नहीं, मेरे सच्चा अर्थ हो जाए छूटता नहीं, पट सुना देंगे भगवान। परंतु वो पकड़ता रहता है, पकड़ता रहता है, भगवान छुड़ाते रहते हैं, पकड़ता रहता है, भगवान छुड़ाते रहते हैं, पकड़ता रहता है। अगर पकड़ना छोड़ दे तो आप ही छूट जा रहे। और भगवान ने कहा तो भगवान की मदद सदा के लिए तैयार है। तो ऐसे शरण जाना है, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो दूसरे किसी का आश्रय नहीं लेना, धर्म का भी आश्रय नहीं लेना। ये नौवें अध्याय में आया है, धर्म मनु प्रपन्ना त्रैविद्या माम सोम पाप, दो श्लोक है। तो वे धर्म मनु प्रपन्ना, धर्म के शरण हुए, वेद त्रयी वेद त्रयी का आश्रय हुए। ऐसे धर्म के प्रसन्न प्रपन्न होने से गता गतं काम कामा लभन्ते, बार बार गता गत पाते। तो धर्म का भी आश्रय नहीं लेना है, धर्म का अनुष्ठान करना है, संसार का व्यवहार करना है, पर चीजों के व्यवहार के क्रिया के व्यक्ति के आश्रित नहीं, आश्रित भगवान के। ये भगवान के नाते सब हमारे पूजनीय है, आदरणीय है, सेवनीय, सेवा करो। परंतु चाहना किसी से मत करो, ये चाहना करना है, यही बंधन का कारण है। इसे चाहना कुछ मेरा कोई है ही नहीं, मेरा हो तो किसने, मैं दबाऊ, मेरा कोई नहीं है, तो मेरा कोई है ही नहीं। सेवा करने के लिए सब अपने हैं, किसी में दुख हो तो दूर कर दो, परंतु तो अपना बस मानो। सब धन तो कमाओ, कुटुंब का पालन करो, घर का प्रबंध करो, मोहल्ले का करो, शहर का करो, प्रांत का करो, त्रिलोक करो, सभी सेवा करो। बनसाहो मत भीतर से, और संबंध किसी से जोड़ो मत, ना तो अपनापन करे व्यक्तियों के जीवों के साथ, ना करे पदार्थों के साथ। तो सर्व धर्मान परित्यज्य मानो भगवान में अर्पण करके, और धर्म के शरण भी ना रहे। माम एकम शरणम विजय, केवल भगवान के शरण हो जाए। तो भगवान कहते तू पाप से मत डर, संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करूंगा, तू तो माम एकम अनन्य भाव से केवल मेरे शरण हो जाए। ऐसी बात भगवान ने कही। इस बात को भगवान ने कहा सर्वगुह्यतम बात कहता हूँ, तो सर्वगुह्यतम पहले कह दिया सर्वगुह्यतम, और अंत में कह दिया इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचना ना सा शुश्रूष देवाच्यम न समांग योग्य सूर्यति। ये हरेक को मत कहना, तो सर्वगुह्यतम का अर्थ है कि सबसे गोपनीय है। ये कठोरदान होता है, डिबिया होती है, नीचे का होता है, एक उसमें रखकर ऊपर दिखते है, तो सर्वगुह्यतम नीचे का तल्ला है। और शरण होने के बाद इतना तो कहना मत किसी को, चुपचाप शरण हो जा। तो ये एक विशेष डिबिया है, इसकी रक्षा आप ही होती, फिर फल कहाँ आवे दूजा आवे ही नहीं, चारों तरफ बाढ़ ऊपर नीचे सब रक्षा। तो ऐसे भगवान के शरण हो जाना, केवल अपने मांगना है। भगवान ने तो शरण ले रखा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबका प्रबंध करते हैं, चाहे वो भजन करे न करे, उल्टा चले ऊंधा चले, उनके स्वर्ग का प्रबंध, नरकों का प्रबंध, 84 लाख का प्रबंध, बंगजन का प्रबंध, देवता असुर राक्षस सबका प्रबंध है, उनके अनुसार जाना पड़ता है। तो फिर दूसरी चीजों को पकड़ने से इतनी जगह भटकना पड़ता है, तो एक भगवान की शरण हो जाए और किसी का आश्रय न रखे, फिर इसको भटकना नहीं पड़ता। ये खास चीज है नाथ, मैं आपका हूँ, ऐसे अपने अहंता को बदल दे और छूट जाएंगे। मैं किसी का हूं ही नहीं, हम हूं कहाँ रहेगी, हम भगवान का ही उपकार में बहुत सुगम और सबसे श्रेष्ठ ये साधन है। इस भगवान के शरण होना ये खास बात है, जो मैंने देखी गीता में पढ़ी है और समझी है, वो बात प्रभु कही है। आप हम सबके सब अधिकारी हैं, शरणागति के अधिकारी होते हैं। ये गाय घाट कहलाता है, सरोवर में जाने के लिए घाट होते, गाय घाट में पैरी नहीं होती, सीधा ही घाट होता है, ऐसे कीड़े चली जाओ, भेड़ बकरी छोटे बड़े सब चले जाओ झटके। इस जैसे ये भगवान का गाय घाट, तो उस प्रभु के चरणों के शरण हो जाना ये अपना काम है, फिर सब काम भगवान का। केवल दूसरों को जो पकड़ रखा है ये छोड़ना आपको पड़ेगा, आपने पकड़ा है, नहीं पकड़ते तो छोड़ना नहीं पड़ता। परंतु एक बात बड़ी भारी कृपा भगवान की है, आप पकड़ते हो पर पकड़ रख सकते नहीं, केवल अपना अहित कर सकते हो, बार बार दुख पा सकते हो, इतना ही नतीजा निकलने का पकड़ेगा, निकलने नतीजा इतना ही निकलेगा, पकड़ रख सकते नहीं। फिर पकड़ लेते, फिर पकड़ लेते, फिर पकड़ लेते, फिर पकड़ लेते, तो पकड़ छोड़ो। अरे पकड़ नहीं दो भगवान को ही पकड़ो, फिर दूसरे को क्या पकड़े, छोटे बड़े को, ऐसे बर को क्या भरूं, जन्म तड़ा मर जाए, बर भरिए गोपाल में जो अमर जुड़ो हो जाए, सदा ही सोहन कदे न दुहागन, मैं तो अजर अमर बर पायो, मैं अजर अमर, मैं बूढ़ा होता न मरता, ऐसा मेरा बर है। ऐसे बर को स्वीकार कर लो, बर नाम स्वीकार करने का है, जो कन्या स्वीकार कर दी वो बर होता है, और जो कर रहे थे वो घर होता है, घर बड़े ही होता है, बड़े बड़े इमारतों वाला घर होता है, वो घर मानते हैं, वो घर नहीं होता। वृक्ष के नीचे भी अगर स्त्री पुरुष रहते हैं और वहां स्त्री बैठी रहे तो तुम्हारे घर कहाँ है, हमारे घर वहां वृक्ष नीचे, वहां वो घर होता, तो घर ही वो ही है, बल भी वो ही है। इस बात से उस परमात्मा के चरणों की शरण हो जाना सरल है, सुगम है और रक्षा है, अपना कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ करना है वो बर करे। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही निर्माण काय वचन मन पति पति कृष्णा, पति सबका पति भगवान है। द्रौपदी ने कहा मम पति पास पास के तुम पति, अब पति जाएगा तिहारी। सूर्यास मरोगे, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे द्रुपता उघारी पत जाएगा तेरी। अरे उसकी पत गई नहीं, जाएगी नहीं, जा सकती नहीं। मास न शोक है, न भय है, न चिंता है, न शंका है, निस्संदेह हम भगवान के हैं। सच्ची बात है, मूल में ठेठ से संती अंत तक सच्ची है। घूमते फिर तो तुम अधीन भगवान के रहना पड़ेगा, कुछ सर्वथा अधीन रह सका नहीं, रह सकेगा नहीं। तो मैं क्यों माथा पच्ची करे भगवान के शरण हो जाए। नारायण नारायण नारायण।
सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रै गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित नवनीतराभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः।
सरल और श्रेष्ठ भगवान की शरणागति है। श्रेष्ठ और सरल भी है, सुगम भी है, और शरणागति के सब अधिकारी है। भगवान के भक्ति की बात चली है भगवान की गीता में, तो नौवें अध्याय को राज विद्या राजगुह कहा है। उसमें विषय चला है बहुत विलक्षण, जैसे नौवें अध्याय के तो अंतिम भाग और दसवें अध्याय का आरंभ का भाग, ये बीच का भाग माना जाए, इसमें विशेष भक्ति की बात है। भक्ति के अधिकारी करने में, अधिकारी बताने में भगवान ने सात बताए, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार, तो ये एक स्त्रियां पांच, एक पापयोनी, एक दुराचारी। अब इसे बाहर कौन रह सके? कोई भी मनुष्य तो दूर रहा, पशु पक्षी भी नहीं रह सके दूर। पापयोनी में सब आ गए। जो पापों के कारण जोड़ी मिलती है वे पापयोनी है, तो 84 लक्ष योनी के सब जीव आ गए। अब ये न करे, करने की योग्यता न हो, मौका न मिले, बात एक अलग है, परंतु शरणागति के अधिकारी नहीं है ये नहीं कह सकते आप। ये पीसी पाप योनि स्त्रियों में सस्ता सुदस्त है परांगति। अब उसमें कहते हैं कि वे पाप योनि ये स्वतंत्र पद नहीं है, ये स्त्रिया वेश्य और शूद्र का विशेषण है, ऐसा कहते हैं। पर आप विचार करो कि अगर विशेषण माने तो दो घाटा हो जाएगा। एक तो आनंद जो निर्क्रियते वारम पर्याप्त सामान्य वस्त सूत्र है सांडिल्य का, भक्ति के अधिकार में आनंद योनि अधिक्रियते, निंद से निंदनीय योनि भी इसमें अधिकार। कैसे पारंपर्याक जैसे सामान्य धर्म है दया क्षमा उदारता संतोष, ये सामान्य किसी वर्ण के किसी आश्रम के नहीं, दूसरों के न करे ऐसी बात नहीं है, सबके लिए है। ऐसे ही भगवत भक्ति में सामान्य बात है, सब अधिकारी है। ममी वांशो जीव लोके जीव भूतल सनातन, तो परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा की तरफ चलने में सब स्वतंत्र है। कोई इसमें ऐसे नहीं बाधा लग जाए न कर सके, ऐसी बात नहीं है। तो सबके सब अधिकारी हैं। ये किसी पाप योन है, बहुत बड़ा दायरा है। तो एक तो ये बाधा लग जाए कि आनंद योनि अधिक्रियते, तुम भी अधिकारी नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये लगेगी स्त्रियो वेश्यास्ता शूद्रा लिखा, उसमें वेश योनि आ गई है। वेश योनि द्विजाति में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन, जिनु संस्कार है वेदों का अधिकार है, तो ये भी पाप योनि में चल जाएंगे। पाप योनि विशेषण हो जाए, पाप योनि कौन कि स्त्रियां और वेश शूद्र। दूसरे स्त्रियां ब्राह्मणों की भी है जबकि यज्ञ में बैठने का अधिकार है, और क्षत्रिय वेश इनके लिए भी पूजनीय है। ब्राह्मणों की स्त्रियां क्षत्रियों के वेशियों के लिए भी पूजनीय है, तो शूद्रों के लिए पूजनीय है ही। फिर पाप योनि में कैसे गिनी जाएगी, तो दोनों तरफ से बाधा लगती है। और दूसरी बात संस्कृत का प्रवाह है, ये भी शिव पाप योन, तो ये भी शिव पाप योन यहाँ वाक्य समाप्त हो जाता है। अरे स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्रा तथा उधर खेलता है, वाक्य उधर अन्वय लगाया जाए तो पाप योनि को विशेष करना अब बैठते नहीं है बात। संस्कृत के सिद्धांत से भी ये भी शिव पाप योन है, और स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्र फिर तथा लगाने की जरूरत क्या थी, पाप योनि वाले ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्र। आगे का किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय सथा, ब्राह्मणा शब्द दिया उसका पुण्य विशेषण दिया, और राजर्षय भक्ता राजर्षय राज के साथ में ऋषि शब्द लगाया, तो राजन शब्द के साथ में ऋषि और ब्राह्मणों के साथ पुण्य, इसका लिखाना क्या तात्पर्य हुआ। इसका तात्पर्य है कि जन्म से भी ऊंचे हैं और आचरण से भी ऊंचे हैं। पहले जन्म से बताए पाप ही हो नहीं, अब ये परम गति को प्राप्त हो सकते हैं स्त्री हमें शूद्र भी, तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण में भी कैसे ये किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य पवित्र ब्राह्मण रहना और राजाओं को ऋषि लेना, तो ये दोनों वर्ण में भी ऊंचे हैं और आचरण में भी ऊंचे, उनका नाम लेगा विशेषण दिया। परंतु इनमें सब में भक्ता शब्द पहले बीच में है, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा, तो भक्त ब्राह्मण भी हो राजर्षि भी हो तो पवित्र आचरण है और पवित्र जन्म है और फिर भक्त हो और भक्त अभिषेक सुदुराचारी भी हो जाता है, तो ये दुराचारी भी नहीं है और पापियों भी नहीं है, दोनों में श्रेष्ठ है, तो उनका किम पुनः कई मुक्त न्याय उनका तो कहना ही क्या है। तो सात अधिकारी बताए, सात अधिकारी से बाहर कौन रहेगा, कोई अधिकारी बाहर नहीं, और मन मना भव मत भक्तो, ये हम तो बात बताई, भगवान का भक्त बनो, मत कर्म करमा मत मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैसे युक्त आत्मान मत पराणा एवं मत परायणा, इसलिए भगवान के पराण हो जाए। तो भाइयों बहनों सुगम से सुगम अवस्था हो तो इससे सुगम क्या होगा, उसका अवस्था ही है। स्वयं ज्योति जी महाराज बहुत बार कहते थे हम तो साधु मोढ़ा हो गए, ये जरूरत नहीं है, काम तो इतना ही है। सेठा ने कहा था कि जीवन मुक्त पुरुष है तो ये है, सेवा कर कोई लाभ तो ले लो। शेर जी की जो सर्टिफिकेट नहीं देते थे, उन्होंने ये कहा था स्वयं ज्योति महाराज के लिए झाड़ी में थे। अब काम तो इतना ही है, हम तो साधु मडू मोड़ा हो गए, नहीं होने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, केवल इतना हे नाथ मैं आपका हूं, इतनी बात है। और भगवान की तरफ से स्वीकार है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन थे तुम भक्त्या मई देते ना, तो मेरे प्रिय है ना मेरे द्वेषी है, ना किसी के साथ आग है ना द्वेष है। तो पहले पहले द्वेष ने कहा तो ये पीछे शुद्ध दुराचार पापियों ने नहीं लिया, दुराचार लिया है। तो दुराचार में सब हो सकते, ब्राह्मण हो सकते, क्षत्रिय हो सकते, वैश्य हो सकते, शूद्र हो सकते, स्त्री हो सकती है और पशु पक्षी भी हो सकते। आचरण जिसके खराब है, समोहम सर्वभूतेषु के बाद ये भी ये अभिशेष दुराचार हो लिया है, मालूम आचरण खराब से वो तो भगवान के द्वेष का विषय होगा। भगवान का द्वेष कौन होगा जो भगवान के कानून से विरुद्ध चले, भगवान की आज्ञा से विरुद्ध चले, तो विरुद्ध चले वही तो दुराचारी होता है। तो दुराचारी है वो भी भगवती की भक्ति का अधिकारी है। भगवान कहते हैं मेरे कोई द्वेष नहीं को भी, ये भजन तीन मां भक्त जो बोती से बोले। और आपने पहले कैसे आचरण किया है, कैसे आप रहो, इसी को परवाह नहीं। अब से सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग, पर मेरा भजन करे। अनन्य भाग का अर्थ अनन्य आश्रय है, भजन का नहीं है। अनन्य भाग का अर्थ के तैल धारावत भगवान का भजन हो। अधिकारी तो देखो अभी से सुदुराचार्य सदाचारी सत्संग करने वाले भजन ध्यान में लगने वाले ऐसे साधकों को पूछा जाए कि तुम्हारा तैल धारावत भगवान में निरंतर मन लगता है क्या, तो बहुत कम आदमी मिलेंगे ऐसे जो भजन करते हैं पारमार्थिक रास्ते में लगे हुए हैं। तो न अन्यम भजति भाग है ना, ये वो अन्य का भाग ही नहीं है और किसी का आश्रय नहीं है, एक भगवान का ही आश्रय है। तो ये एक आश्रय लेने में कठिनता नहीं है, ये जितनी बहना है पति प्रसाद नहीं होने पर भी उसी की कहलाती है पति की। और सदाचारिणी श्रेष्ठ हुए तो है ही, तो एक का आश्रय ले सकते हैं ना हर एक आदमी, पतिव्रत एक धनी, अरे एक ही होता है। ऐसे एक भगवान का आश्रय ले लो, आप कैसे ही हो कोई परवाह नहीं। तो ये सुगम है। अब इसलिए बहना जी के ब्याह हो जाए एक ही हो जाए आश्रय ले लेना, शिष्य हो जाए वो गुरु जी का आश्रय ले ले लेना, गोद चला जाए वो माँ बाप का आश्रय ले ले लेना, ये होने की बात सीधी है। इसमें कोई पराधीन नहीं है, इसमें कोई निर्बल नहीं है, इसमें कोई अयोग्य नहीं है, इसमें कोई अपात्र नहीं है, वो तो आप बताओ। मैं कहूं मैं भगवान का मानू अपने को, मेरे भगवान ऐसा मानू तो कौन मना कर सका, अरे क्यों मना करेगा, भगवान की तो मना है ही नहीं। तो मैं भगवान का हूं भगवान मेरे हैं, बहुत सुगम साधन है ये। अब अड़चन एक ही लगती है कि मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूं,
इसमें अनंतता में फर्क पड़ता है। कठिनता पड़ती है इसमें पड़ती है, इसमें कठिनता पड़े तो मैं भगवान का हूँ इसमें इतनी नहीं पड़ती है, मेरा कोई नहीं है यहाँ अटक जाता है आदमी। और मैं और का भी हूँ, मेरे माँ बाप का हूँ, मेरे स्त्री पुत्र का हूँ, मेरे कुटुंब का हूँ, मेरे संप्रदाय का हूँ, ये लगा है। तो ये थोड़ी सी कठिनता है, थोड़ी सी। ये संबंध केवल उनकी सेवा करने के लिए है, ये अगर युक्ति आ जाए कि माँ बाप की सेवा करने के लिए माँ बाप का हूँ, भाई भौजाई भतीजे की सेवा करने के लिए मैं उनका हूँ, स्त्री पुत्र का भी पालन पोषण करने के लिए उनका हूँ, मैं उनसे रहने के लिए मैं उनका नहीं हूँ, इतना त्याग करना पड़ेगा। केवल इतना, फिर आपका संबंध है जी रहो, सबका पालन पोषण करो, सबके साथ संबंध रखो, परंतु व्यक्तिगत सुख और लाभ की बात है ये छोड़नी पड़ेगी। ये अगर तो कहीं जाओ आप, भक्ति मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, नाशवान की आसक्ति है, नाशवान का जो आकर्षण है ये तो छोड़ना पड़ेगा भाई, नहीं तो कैसे होगा। लड़की का ब्याह हो गया और माँ बाप और भाई भतीजों का मोह नहीं छोड़ेगा तो ससुराल कैसे जाएगी। तो संसार का मोह भी नहीं छोड़ सके तो क्या करे। कि महाराज अब इसमें बात है कि हम छोड़ नहीं सकते, हमारे से छूटता है नहीं। अब ध्यान देना, आपसे छूटता नहीं, छोड़ना चाहते नहीं। अब ये प्रश्न है, कहते हम साथ हैं तो कठिनता नहीं है, छूटता नहीं तो कहो भगवान से ये नाथ मेरे से छूटता नहीं है। भीतर में विचार है कि इनका आश्रय नहीं रखना है, जड़ की आशा नहीं रखनी है, भोगों की आशा नहीं रखनी है, संग्रह की आशा नहीं रखनी है, ऐसा विचार आपका पक्का हो जाए या छोड़ना चाहो तो बार बार को हे नाश मेरे छूटता नहीं, तो भगवान की तरफ से बल मिल जाएगा, शक्ति मिलेगी भगवान की तरफ से, भगवान की तरफ से, संतों की तरफ से, गुरुजनों की तरफ से, धर्म की तरफ से, शास्त्र की तरफ से, ये सब हमारे मदद करने को तैयार है। और आपका पक्का विचार हो जाए तो आज की दुनिया आपकी मदद करेगी, चोर डाकू आदि के दुराचारी भी आपकी मदद करेंगे, आपको दुख देने का विचार है, दुख देने को तैयार है, वे भी आपके हितकारक हो जाएंगे, हितेशी हो जाइए नहीं कहता हूँ मैं, वे द्वेष करके आपका नुकसान करना चाहे, और नुकसान करना चाहे, नुकसान करे उसमें लाभ हो जाएगा आपके, ध्यान देने की बात है। हमने देखा है केवल पोथी बात नहीं है, पोथी तो है ही, और भगवान की बात है उसके विषय में कहते हैं कि रहस्य न प्रभु तत् सुख किए की करत सुरत सेवा रहिए की। चूक कर दे वो भगवान को याद नहीं रहती, वो याद न रहने से भगवान की बहम रहता है, तो ये कि सहवार याद करे उसको, जिसको याद न होता सौ बार घोकरो याद हो जाएगा। तो हृदय की बात को भगवान बहुत विशेष आदर देते हैं, भवग्राही जनार्दन, आप सच्चे हृदय से चाहते हैं कि हम भगवान के शरण हो तो आपकी सिद्धि हो जाएगी, आज चाहे आपको दिखे चाहे न दिखे। ध्यान देना मेरी बात की तरफ, ख्याल करना कि आपका विचार है कि मैं भगवान के शरण हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ और कोई मेरा नहीं, मानना चाहता हूँ परंतु मेरी मन बुद्धि नहीं मानते, मेरा आकर्षण है पदार्थों की तरफ, भोगों की तरफ, परिवार की तरफ, और मेरी छूटता नहीं है, हे नाथ मैं क्या करूँ। तो छूटता नहीं है वो दोष नहीं है, छोड़ना चाहते नहीं हो ये दोष है। इसको अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके कर लो भाई हम छोड़ना तो चाहते हैं, विचार के द्वारा ही सही, अचानक तो हम छोड़ना नहीं चाहते परंतु विचार के द्वारा हम इनको छोड़ना चाहते हैं और भगवान से भी लगना चाहते हैं, ऐसा भाव अगर आप रखोगे तो समय कुछ लग सकता है परंतु सिद्धि इस बात की हो जाएगी, परंतु सिद्धि इस बात की हो जाएगी, नहीं लग सकते इसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि शक्ति भगवान देते हैं, संत महात्मा देते हैं, शास्त्र देता है, धर्म देता है और आजकल की दुनिया देती है। कहीं कोई भजन करता है तो लोग बदल जाते हैं, लोगों का भाव बदल जाता है, अमुक आदमी ये है, कई कहते हैं पाखंडी है, अरे आ बात नहीं है, देखो कैसा है, बदल जाते हैं। जंगलों में रहने वाले तत्परता से भगवान ही तरफ भजन लगे हुए हैं, डाकू है, चोर है, वे उनकी मदद करते हैं कि भाई सच्चे साधु की सेवा करो, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। आपका केवल भाव भगवान के तक होना चाहिए, नियत आपकी हो गई हम भगवान में लग जाए, वो तो इनसे सरल और क्या चाहते हो। भगवान की तरफ चलने में कोई अनधिकारी नहीं है, इसमें कोई अयोग्य नहीं है, सब तरह से अयोग्य होता हुआ ही अयोग्य हो जाता है, सब तरह से अयोग्य होता है वो भगवान के चरणों की शरणागति में योग्य सिद्ध हो जाता है, सब तरह से अयोग्य हमारा है, हम क्या करें, तो हे नाथ पुकारो। भागवत में आया है कि अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार दी, अकाम कोई कामना नहीं है, किंचित मात्र भी लोक पर लोग कोई कामना नहीं, क्या करें, तीव्र भक्ति योग इन अजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करें। दूसरे को पूछे तुम्हारे के सर्व काम मेरे तो लोक की रूपर लोक सब की पुत्र की सब ये धन की सब ये मान की सब ये जीने की सब ये निरोग होने की इच्छा है, मेरे तो कई इच्छा है, सब तरह की कामना है, बोलो क्या करें। तीव्र भक्ति योग इन अजेत एक दवाई एक ही भगवान की तरफ से लो, उसको पुकारो, अकाम सर्व काम हुआ,